ఓం శాంతి. దేహకి సంబంధోసి వైరాగ్ ఇస్ విషయ పర్ చర్చా కరెంగే. దేహ జీ కల్ మురళి మే బాబా నే బోలా థా దేహ ఔర్ దేహకి సంబంధో కో భుల్ ముజే ఎక్ కో హీ యాద్ కరో మామే కమ్ యాద్ కరో. తో జీ గీతా మే ప్రథమ అధ్యాయ ఆతా హై అర్జున్ విషాద్ యోగ్. तो उसमें दिखाया गया है कि जब रणभूमि पर अर्जुन जाता है तो उसको पूरे संबंध याद आ जाते हैं कि भीष्म पिता तो मेरे दादा, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ. फिर उनके पूरे रिलेटिव होते, काके मामे चाचे दादे भाई सब होते, तो वो विषाद से इतना ग्रस्त हो जाता है कि क्या करे. तो फिर श्री कृष्ण उन्हें पूरे जानकारी देते हैं और पहला वही ज्ञान देते हैं कि शरीर और आत्मा का भेद बताते हैं. जैसे बाबा ने कल भी बोला, जीव का और आत्मा का खेल है. तो जीव तो विनाशी है, साकार शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है. तो यह ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है अर्जुन को, तो थोड़ा बुद्धि खुलती है, लेकिन फिर अनेक प्रश्न उसके तैयार होते रहते. तो फिर लास्ट 18 अध्याय में बताया कि उसका मोह नष्ट हो जाता है पूरे ज्ञान प्राप्त करने के बाद. तो बाबा भी हमें, हम भी जब ज्ञान में आए तो पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम मोह के संबंध, देह के संबंध है उसमें ही फंसे हुए थे. लेकिन 7 डेज कोर्स करने के बाद हमें स्मृति आई कि नहीं, ये देह और देह के संबंध सब विनाशी है. जैसे जन्म होता है उसके बाद ही ये संबंध प्राप्त होते हैं. जन्म के बाद ही बच्चा होता है, फिर उसको माता पिता सब, पहले बच्चे को कोई पहचान नहीं होती, लेकिन उसको पहचान फिर दिलाई जाती है, उसको पक्का कराया जाता है. तो ऐसे देह के संबंध ही है, जन्म से ही प्राप्त होते है ना, जहां जन्म है वहां संबंध है. तो यही हमें बाबा ने स्मृति दिलाई कि पहली स्मृति मैं आत्मा हूं, और इस स्मृति आते ही हम देह के जो संबंध है, मैं शरीर हूं या कोई हमारा जो लौकिक पैसा है या पोजीशन है, उसके आधार से हमारा देह का जो संबंध है टूटते गया. तो ऐसे बाबा ने हमारा ये देह के संबंध से जो लगाव हो जाता है परिवार में या कहीं भी, तो इसको कैसे तोड़े, कैसे दूर रहे, कैसे वैराग्य आए इससे, तो कई मुरलियों में बाबा ने इस पर बहुत सारी अव्यक्तवाणियों में भी चर्चा की हुई है. तो देखा जाता है कि हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो ये संबंध ज़्यादा होते हैं घर गृहस्थ में, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो थोड़ा कम संबंध होते हैं, क्योंकि भाई बहन माता पिता बाप दादा का ही परिवार होता है. लेकिन जब लौकिक में जाते हैं तो फिर अनेक संबंध होते हैं. हाँ, तो इनसे फिर लगाव होता है, क्योंकि इनसे हमें कुछ मिला है, कुछ प्राप्तियां हुई है, कुछ वर्षा मिला है या कुछ स्नेह और सहयोग मिलता है. तो ये इतने मतलब जल्दी भी नहीं संबंध का जो लगाव है, जो रग है, मोह की रगे जो बोलता है, जल्दी नहीं तोड़ पाते. फिर भी जब ज्ञान बीच में आ जाता है तो फिर ये इजी हो जाता है. माना स्मृति मेन यहाँ आता है, स्मृति तो नष्टमोहा स्मृति स्वरूप जो 18 अध्याय वह अध्याय है उसमें यही है कि स्मृति है तो सब कुछ सहज है. तो हम भी ऐसे कुछ स्मृतियां अपने जीवन में लाएंगे तो वो कैसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माना देह के संबंधों से का जो संबंधों का जो लगाव है उससे कैसे दूर रह सकते, उस पर कुछ युक्तियां हैं. तो पहली जो युक्ति है स्वधर्म की युक्ति, माना स्मृति स्वधर्म की स्मृति अगर है तो हम ये जो देह का संबंध है उससे थोड़ा मुक्त रह सकते हैं। तो स्वधर्म में तो जब विचार सागर मंथन करते तो फिर पूरा स्व आत्मा का निज देश, फिर स्वराज, ये पूरा याद आ जाता है। लेकिन ये स्मृति आनी चाहिए, ये मेन बात है। तो उसके लिए जैसे स्वधर्म है तो स्वधर्म में बाबा ने टिकने को बोला है, तो स्वधर्म बोलते ही क्या हो गया कि मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान राजा हूँ और सर्व कर्मेंद्रिया है तो प्रजा है। तो इस स्वराज स्वदेश की स्मृति आते ही फिर ये फिर हमें जागृति आ जाती है कि ये कैसे ही हम ये संबंध, जैसे मैं आत्मा हूँ तो दूसरे भी सब आत्माएं हैं, तो ये संबंध आ जाने से क्या हो जाता है कि लगाव दूर हो जाता है। फिर दूसरी स्मृति है ब्राह्मण जन्म की स्मृति। ब्राह्मण जन्म की स्मृति आते ही तो ब्राह्मण जन्म कैसे हुआ, हमें शुरुआत में तो स्नेह और सहयोग से ही, पहले बाबा का स्नेह मिला, परिवार का स्नेह मिला, तब हम कनेक्ट हो पाए। और ब्राह्मण परिवार एक ईश्वरीय परिवार है, स्वयं भगवान द्वारा रचित। तो ये परिवार की स्मृति अगर है कि हम अलौकिक है, हम लौकिक नहीं है, कुछ विशेष आत्माएं हैं, ये स्मृति अगर जागृत रहती है तो फिर भी हमें वो संबंध खींचते नहीं। और जैसे ब्राह्मण जन्म की बाबा ने जो राशि बताई है, दशा बताई है, जन्मपत्री बाबा ने निकाल के दिए कि हम ब्राह्मण ऐसे वैसे नहीं है, उच्च से उच्च ब्राह्मण है, संगम योगी ब्राह्मण माना सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण चोटी है। तो ऐसे ब्राह्मण दुनिया में तो ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे, लेकिन वो कुकुवंशावली और हम मुखवंशावली हैं। तो इसमें ये ब्राह्मण जन्म की स्मृति हमें संबंधों में के लगाव से मुक्त करा सकती है। फिर है चारों सब्जेक्ट की स्मृति। चारों सब्जेक्ट आते ही हमें स्टूडेंट लाइफ याद आ जाती है, और हम जैसे बाबा टीचर हैं और हम स्टूडेंट हैं, तो ये स्मृति आते ही तो हमारी स्टूडेंट लाइफ तो कुछ सीखने की इच्छा जागृत होती है, हम तो सीखने वाले हैं, कुछ नया नया जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम सीखने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट जैसे लौकिक दुनिया में होते हैं तो वो सभी की ये इच्छा होती है कि हम आगे जाए, नंबर वन ले। तो यहाँ भी बाबा ने रखा है कि जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा वो उच्च पद पाएगा, तो हम अगर नहीं कर पाते तो फिर हम समझते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये स्मृति भी बहुत याद दिलाती है संबंधों के लगाव से, क्योंकि हमें स्मृति रहती है कि हम स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम तो ईश्वरीय स्टूडेंट हैं। तो ये नशा भी बहुत हमें मदद करता है। फिर है बाप से सर्व संबंधों की स्मृति। जैसे बाबा ने अष्ट संबंध बताए, फिर भी हम अनेक रीति से भी संबंध को याद कर सकते हैं। जैसे मुख्यतः बाप टीचर सदगुरु, हाँ बाबा ने एक मुरली में भी कहा था ये संबंध अगर नहीं, इस संबंध से अगर नहीं याद करते तो सत्युग में भी नहीं जा पाएंगे, मतलब ऐसा कुछ एक आया था वर्ण कि सत्युग में नहीं जा पाएंगे। तो मैंने आदि से जो पार्ट बजाने का है 84 जन्मों का, तो तीनों संबंधों से पार्ट माना याद करना पड़े। तो जैसे अनेक संबंध हैं, माता पिता, भाई का संबंध, सखा का संबंध, तो ये संबंधों से भी हम याद करते हैं तो ये स्मृति बनी रहती है। और जो लौकिक संबंध है या अलौकिक संबंध है, इससे हम थोड़ा दूर हो जाते हैं और एक बाप से ही संबंध जुड़ जाते हैं। तो ये संबंध भी हमें लगामुक्त बनने में मदद करते हैं। निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भावना बस करण कराना, और बाबा करा रहे मैं तो निमित्त मूर्त आत्मा हूं। जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है उससे कराते हैं, तो ये अगर स्मृति है तो हम इस लगाव देह के लगाव से भी मुक्त हो सकते हैं। इसमें एक कहानी आती है कि एक राजा थे और उनका जो गुरु था वो भिक्षाटन करता था, है ना, भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता था। तो राजा को ये अच्छा नहीं लगता था, तो राजा ने सोचा कि कुछ युक्ति करते हैं। तो उसने अपना जो गुरु था सन्यासी या गुरु कहे, उसके कमंडल में एक चिट्ठी लिख के रख दी कि मेरा जो राज्य भाग्य है वो आपका है, आप जो चाहे ले सकते हैं, आपको ये भिक्षाटन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में जब गुरु अपने झोपड़ी में आश्रम में जाके देखता है कि कमंडल में कुछ लिखा हुआ है, तो ये राजा की हो सकती है, कोई तो कर ही नहीं सकता है, वो पहचान गए। तो फिर राजा के पास जाते हैं, तो आपने ये लिखा है? तो राजा बोलते हैं हाँ मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ये मांगना। तो फिर जो गुरु होता है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं मेरा ये आज से मेरा हो गया, तो आपका कुछ भी नहीं, फिर आपने दे दिया तो मेरा हो गया। हाँ, तो गुरु बोलता है फिर आपको मैं, जैसे राजा बोलता है कि आप ही संभालो, आप ही ये प्रजा को संभालो या जो भी है राजपाट। तो लेकिन गुरु बोलता है ये तो मेरे को आता ही नहीं राजपाट संभालना करना, तो मुझे तो नौकर इसके लिए कोई नौकरी रखना पड़ेगा दूसरे। तो बोलता है कि राजा तुम ही करो, मैं आपको नौकरी देता हूँ राजा बनने की, आप करो। तो वो भी मान जाता है राजा, हाँ ठीक है। तो उसको राजा जो स्मृति, राजा को स्मृति रहेगी मेरा नहीं है ये, अब ये तो गुरु का है, मैं तो नौकर हूँ। तो ये स्मृति रहती है और वो इस प्रकार से वो निर्विघ्न राज्य चलाता है। तो इस प्रकार ये निमित्त भाव है इसमें कि राजा खुद नहीं करते हैं, किसी के अंडर में। पहले तो राजा को अभिमान था कि ये मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन बाद में उसकी स्मृति चेंज हो जाती है, नहीं ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो गुरु का है। तो इस प्रकार हमें भी ये करण करावनहार की स्मृति अगर रहती है तो ही हम देह के लगाव के संबंध से दूर रह सकते हैं। तो इस प्रकार फिर सुदर्शन चक्र की स्मृति, सुदर्शन चक्र फिराते ही हमारे पांचों स्वरूप याद आ जाते हैं और इसमें हम पूरा हम कैसे थे क्या थे वो हमें स्मृति आ जाती है, तो फिर ये देह के संबंध हमें लगाव में नहीं लाते। फिर खुदाई खिदमतगार हूँ, बाबा ने तो मुझे ईश्वरीय सेवा के लिए यहाँ रखा है, तो इससे मैं सारे विश्व की सेवा करना है मुझे, खुदाई खिदमतगार हूँ तो विश्व सेवाधारी हूँ, ये स्मृति अगर रहती है तो भी हम ये देह के संबंध के लगाव से दूर हो सकते हैं। फिर नॉलेज के दर्पण में अपने आप को बार बार देखना, क्योंकि हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हम कौन सी लाइफ में हैं, आत्मा है या ब्राह्मण है या शरीरधारी है। तो जब हम अपने आप को नॉलेज के दर्पण में देखते हैं तो स्मृति रहती है कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ और जो भी जो सम्मान है हमारे उस सम्मान में रहते हैं, तो फिर ये हम संबंधों से दूर हो सकते हैं। फिर वह उपरामूर्ति, उपरामूर्ति अगर है तो हम देह के जो संबंध है उसके लगा हुए उससे मुक्त रह सकते हैं। तो इसमें उपराम माना साधनों से उपराम आता है, उपरामूर्ति साधनों के लिए आती है, लेकिन साधन हमके हमें कहाँ से मिलते हैं, लौकिक से या अलौकिक संबंध से ही मिलते हैं। तो इनके प्रति भी जिसने कोई गिफ्ट दे दिया तो उसकी स्मृति नहीं रहेगी देने वालों की, तो हम भी उसको अगर किसी ने गिफ्ट दिया तो उसको सबसे पहले बाबा को अर्पण करके फिर स्वीकार कर सकते। तो यह भी जो देह के संबंध खींचते हैं इसमें, जो गिफ्ट मिला या इसमें देहधारी की स्मृति आती तो वो स्मृति नहीं आएगी, तो इससे भी लगाव मुक्त रह जाएंगे। फिर हथ की जिम्मेवारी जो भी मिली है हमें, जो भी लौकिक सेवा मिली है, तो उसको अलौकिक अलौकिक जिम्मेवारी समझना या बेहद की जिम्मेवारी। तो ये बाबा ने एक स्थान पर हमें कोई भी सेवा दी तो ये कोई साधारण सेवा नहीं है, यह बेहद की सेवा है, विश्व की सेवा होती है। तो ये स्मृति अगर रहती है तो भी हम संबंधों के लगाव से दूर हो सकते हैं। फिर लौकिक को अलौकिक संबंधों में बनाने की स्मृति या कला भी कहेंगे इसको, जैसे लौकिक संबंध है हमारे तो उसको भी हम अलौकिक में कर सकते हैं। जैसे काका मामा चाचा है तो ये तो लौकिक संबंध तो रहेंगे ही, बोलने भी आता है कि बोल सकते हैं, लेकिन जो अंदर की हमें जागृत अवस्था में है तो ये स्मृति क्या रहेंगी, ये भी आत्मा है। और जो भी रिश्ता है वो तो अभी ब्राह्मण परिवार में आ गए तो एक ही रिश्ता रहता है भाई और बहन का, लेकिन अगर युगल आ जाते हैं तो फिर भाई बहन तो नहीं कहते हैं। लेकिन कई जगह हमने सुना है कि पत्नी को भी बहन के नाम से बुला लेते हैं, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि जैसे युगल है तो अपने पत्नी को माता के रूप में माना संबोधन करते हैं नाम लेके, और जो पत्नी है तो भाई के रूप में फलाना भाई फलाना भाई। तो ये संबंध भी हमारे थोड़ा देह के जो माना लौकिक को अलौकिक में संबोधन में कर सकते, तो इससे भी लगामुक्त रह सकते हैं। और इसमें एक कहानी, ये कहानी नहीं थोड़ा सा ये है कि पति पत्नी के संबंध में, कि ऐसे ही एक दिन पति पत्नी आपस में बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि एक दो की विशेषताओं की और कमियों की, तो कमियों का तो वर्णन नहीं किया। तो जैसे एक दिन समय सुबह के समय में पति पत्नी की चर्चा हो रही थी कि पत्नी ने कहा कुछ मेरे में कुछ कमी है तो आप बताओ, निकाल के दिखाओ। तो कुछ बाद में पति कहता है अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, बाद में शाम को आके इस पर चर्चा करेंगे। अरे तो पति थोड़ा समझदार था, नहीं पत्नी भी ठीक थी थोड़ा, तो शाम को बताएंगे, क्योंकि परिवार का जो संबंध है परिवार को कैसा जोड़ा जाए। हाँ तो फिर जब घर में आते हैं तो पति क्या करता है, कुछ नहीं करता, फूल लेके आता है। तो पत्नी समझ नहीं पाती है फूल क्यों लाया, मैंने तो वो चर्चा डिस्कशन करने को बोला था कुछ कमियां है, लेकिन पति ने कहा कोई कमी नहीं है आप में सब विशेषताएं है। तो पत्नी सोचती है कि मेरे में कुछ कमी तो है, कुछ जानती है, लेकिन इन्होंने मेरी कोई कमियां नहीं ढूंढी। तो वो रियलाइज हो जाता है पत्नी को, तो वो परिवर्तन हो जाती है, मतलब जो भी कमियां होती है वैसे हर एक में तो होती है, तो दूसरे दिन से सब परिवर्तन हो जाता है। तो पति भी सोचता है कि ये है, अगर मैं निगेटिव सोचता या कमियां निकालता तो ये परिवर्तन नहीं हो सकती थी, लेकिन जब पॉजिटिव दिया उन्होंने, कुछ विशेषता देखी तो परिवर्तन हो गए। तो ये जो घर परिवार में युक्तियां होती है कि अपने जो भी एक दो की कमियां देखते हैं तो फिर बढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन जब विशेषता देखते हैं तो संबंध मधुर हो जाते हैं और परिवार खुशहाल हो जाता है। तो ये लौकिक में जो होता है संबंधों में। तो इस प्रकार हम जो स्मृतियां हैं रखते हैं तो लगाव से मुक्त होते हैं। तो क्योंकि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय परिवार है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु परिवार है, तो प्रभु परिवार की स्मृति भी ये लगाव मुक्त बना देती है। तो इस प्रकार हम ये जो देह के संबंधों से वैराग्य कैसे हो, तो ये कुछ युक्तियां या स्मृतियां अगर हम रखते हैं तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और जैसे बाबा भी जब बाबा की भी जब पदरामनी हुई हैदराबाद सिंध में, तो बाबा ने भी युक्ति रची थी। जब दादा लेखराज कीर्तन में शिव बाबा आए तो सबसे पहले तो उनका जो लौकिक परिवार था, लौकिक परिवार की आत्माएं कैसे वो संबंधों का बाबा ने त्याग किया। जैसे बाबा लिखते थे उस समय कि जसोदा भी आत्मा है, देह के संबंध तोड़ने के लिए बाबा ने पक्का किया था अपने आप पर, जसोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, बेटे के लिए भी आत्मा है। तो इस प्रकार उन्होंने संबंध तोड़ा था। और जैसे ही दादी छोटी छोटी आयु में आई थी, दादियों भी अपना अनुभव सुनाते कि हम घर के माता पिता को उतना नहीं मानते थे जितना बाबा और मम्मा को ही माता पिता मानते थे, यानी इतना उनका लौकिक से संबंध टूट गया था। तो इस प्रकार, क्योंकि बाबा उस समय तो वो बच्चे थे ना, 10 साल के 8 साल के, फिर भी इतना परिवर्तन करना, आजकल के बच्चे अगर देखो, हम भी बच्चे थे सब, लेकिन मम्मी पापा को छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन्होंने कैसे छोड़ा। तो वही पूर्व जन्म का है, बाबा को मिलाना था वो तो है ही, लेकिन उस समय ये वैराग्य आना लौकिक से, लौकिक संबंधों से बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बाबा की युक्तियां थी उस समय ये परिवार को जोड़ने की। और एक ही हैदराबाद सिंध में ही पूरा सिजरा इनका बना हुआ था, क्योंकि जन्म जन्म की बाबा की ये सहयोगी आत्माएं थी, साथ साथ चलने वाली, राजपाट में पूरे 84 जन्म साथ साथ ही चलने वाली आत्माएं, तो साथ साथ ही उनका पूरा लंगर ही चलता है, एक सिजरा ही चलता है। और संगम युग में भी यहाँ मधुबन में भी पूरे साथ में रहे, फिर बाबा ने सेवा के लिए भेजा और विश्व का विस्तार हुआ। इस प्रकार पूरा ब्राह्मण परिवार ही अलौकिक हो गया। हाँ, तो इस प्रकार हम देह के लगाव के संबंधों से कैसे दूर रहे, कैसे वैराग आए, इस पर जो अभी हमने चर्चा की, तो ये 12 युक्तियाँ थी। तो पहली थी स्वधर्म की स्मृति, स्वधर्म में आ गया स्वदेश स्वराज, तो ये स्मृति अगर रहती थी हम लगाव मुक्त बन सकते हैं। फिर ब्राह्मण जन्म की स्मृति, फिर चारों सब्जेक्ट की स्मृति, तीसरा, चौथा था बाप से सर्व संबंधों की स्मृति, फिर पांचवा था निमित्त भाव की स्मृति, फिर स्वदर्शन चक्रधारी की स्मृति, खुदाई खिदमतगार हो या ईश्वरीय सेवक हो, ईश्वरीय सेवाधारी हो या स्मृति, फिर नॉलेज रूपी दर्पण में बार बार देखना अपने आप को, फिर है उपरामूर्ति, फिर है हथ की जिम्मेवारी को भेद में परिवर्तन करना, लौकिक संबंध, फिर है लौकिक संबंध को अलौकिक में परिवर्तन करना, प्रभु परिवार की स्मृति, और हो गया ना बार, और लास्ट स्मृति तो यही है बाबा ने जो कही है, नष्ट हुआ स्मृति स्वरूप बनो, अब घर जाना है कि स्मृति। हाँ, ये स्मृति भी मदद करती। अच्छा, ओम शांति।
साथी दुख में न जोई, सुख के सब साथी दुख में न को,
एक साचा दूजा ना को।